हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अमन से बात करने के बाद आंशी घर पर अकेली बोर हो रही थी। चेतना जी और तेजो जी अभी तक घर वापस नहीं लौटी थी। आंशी रूम में बैठकर म्यूजिक सुन रही थी। ज्यादा टाइम तक म्यूजिक सुनने के बाद आंशी उससे भी बोर हो गई, तो उसने हेडफोन निकालकर साइड में रख दिए। वो उठकर बाहर जाने को हुई, तभी हाउस हेल्पिंग स्टाफ में से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। हाँ बोलो, कुछ काम है क्या? आंशी ने उसके पास जाकर पूछा। मैम, 3 बज गए हैं और आपने अब तक लंच नहीं किया है। आपका घर का खाना खाने का मन नहीं है तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लीजिए। अगर आपने कुछ नहीं खाया तो चेतना मैम मुझे डांट लगाएगी, हाउस हेल्पर ने जवाब दिया। हाँ सही कह रही हो, भूख तो मुझे भी लगी है, पर मेरा अकेले खाना खाने का मन नहीं है, आंशी ने मायूसी से कहा। आप खा लीजिए, उन लोगों को आने में काफ़ी टाइम लगेगा। अमन सर का भी कोई भरोसा नहीं है, वो रात को लेट ही आते हैं। उसकी बात सुनकर आंशी ने कुछ देर तक सोचा और फिर बड़बड़ा कर कहा, हाँ पूरे दिन काम करता रहता है तो उसे खाना खाने की फुर्सत कहाँ से मिलेगी? वो यहाँ नहीं आ सकता तो क्या हुआ? मैं तो जा सकती हूँ। अमन के पास जाने का सोचकर आंशी के फेस पर हल्की स्माइल थी। उसने हाउस हेल्पर से कहा, अच्छा अमन को खाने में क्या पसंद है? जी जी, मुझे कैसे पता होगा, मैं कुकिंग स्टाफ में नहीं हूँ, वो वैसे भी बाहर ही खाना खाते हैं, उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। ठीक है, फिर कुकिंग स्टाफ में जो है मुझे उनसे बात करनी है, उन्हें कुछ तो पता होगा, आंशी ने कहा और उसके साथ किचन में गई। वहाँ किसी को भी अमन की चॉइस के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इसलिए जो भी बना था कि आंशी ने वो पैक किया और गाड़ी लेकर एजेंसी जाने के लिए अकेले ही निकल गई। एजेंसी का रास्ता काफी दूर था, शॉर्टकट लेने की वजह से उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा। आंशी लगभग 5 बजे के करीब एजेंसी पहुंच चुकी थी। वो वहां पहले भी आ चुकी थी, फिर भी सिक्योरिटी स्टाफ ने उसे बाहर ही रोक लिया। बिना परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकती है मैडम, गार्ड ने कहा। अरे ऐसे कैसे नहीं जा सकती, मेरा हस्बैंड यहाँ काम करता है, आप उससे बात कर लो। मुझे नहीं पता, मुझे अंदर जाना है तो मैं जाकर रहूंगी, आंशी वहाँ खड़ी होकर उससे बहस करने लगी। तभी दूसरे गार्ड ने अंदर कॉल लगाया। अमन को आंशी के वहाँ होने का पता चला तो वो जल्दी से बाहर आया और उसे अंदर लेकर गया। पागल हो गई हो क्या, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से और तुम अभी के अभी घर जा रही हो। आंशी को वहाँ देखकर अमन उसे डांटने लगा। गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, तुमने कुछ नहीं खाया ना अब तक, आंशी बोली। अमन ने ना में सिर हिलाकर कहा, हाँ मैंने कुछ नहीं खाया है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, पर ये आर्टिस्टिक नहीं है, प्लीज यहाँ से जाओ, मैं घर पर बात करता हूँ। अमन आंशी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगा। अब तक आंशी के वहाँ आने की न्यूज एजेंसी में लगभग सबको पता चल चुकी थी। लावण्या उससे बात करने के लिए वहाँ आई। उसने देखा अमन आंशी को वहाँ से निकाल रहा था तो वो बोली, रहने दो इसे यहाँ से भेजना, जब ये इतनी दूर आ ही गई है तो तुम खाना खा सकते हो। देखो अब तो तुम्हारी एक्स भी मुझे सपोर्ट कर रही हैं, मैं यहाँ से तुम्हें खाना खिलाए बिना कहीं नहीं जाऊंगी, आंशी ने कहा, जबकि उसके मुंह से अपने लिए एक्स शब्द सुनकर लावण्य उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। चलो फिर, तुम खाना लेकर इतनी दूर आ ही गई हो तो क्यों ना हमारी पूरी टीम के साथ मील शेयर करो, वैसे भी यहाँ किसी ने भी लंच नहीं किया है। अमन ने अब तक तुम्हें बता ही दिया होगा कि तुम्हारे पापा भी यहीं पर हैं, वो तुम्हें यहाँ देखेंगे तो बहुत खुश होंगे, लावण्या ने हल्का मुस्कुराकर कहा। जब से मिस्टर जिंदल को विधिक और आंशी के बारे में पता चला था तब से वो आंशी से मिले नहीं थे। आंशी अब तक उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अमन की तरफ से देखा। अमन मामले को संभालता उससे पहले लावण्या ने आंशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती उनके कॉमन रूम में ले जाने लगी। इतनी केयर तो इसकी आज तक मैंने भी नहीं की, तुम तो सच में एक अच्छी पत्नी होने का सारा फर्ज निभा रही हो, चेतना आंटी को तो बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम्हें ये सब करते देख, कॉमन रूम तक ले जाते हुए लावण्या आंशी से बातें कर रही थी। अमन भी उनके पीछे आ रहा था। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, मेरी बात नहीं मानी, अब खुद ही भुगतो। वो तीनों एजेंसी के कॉमन रूम में आ गए। लावण्या ने किसी को भेजकर उनके बाकी टीम मेंबर्स को बुला लिया। उसने कैंटीन से एक्स्ट्रा खाना भी मंगाया था। कॉमन रूम में लावण्या, अमन और आंशी के अलावा जस, मिस्टर गुप्ता और मिस्टर जिंदल भी मौजूद थे। अरे वाह, तुम यहाँ खाना लेकर आई हो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, तुम्हारे बहाने हमने थोड़ा ब्रेक ले लिया, वरना सुबह ब्रेकफास्ट ही किया हुआ था। थैंक यू सो मच आंशी, किसी को तो हमारी केयर है, ये देखकर अच्छा लगा। मिस्टर जिंदल ने जब आंशी की तरफ देखा तो ना चाहते हुए भी उन्हें विधिक और उसके रिश्ते की याद आ गई। उन्होंने आंशी से नजरें फेर ली। उनका रूखा बर्ताव देखकर आंशी का चेहरा उतर गया। अमन ने आंशी के लिए चेयर पुल की और कहा, आओ बैठो, तुमने भी कुछ नहीं खाया ना। वो सब खाना खाते हुए कैजुअली बातें कर रहे थे, जबकि आंशी लगातार मिस्टर जिंदल की तरफ देख रही थी। अमन ने टेबल के नीचे से आंशी का हाथ पकड़ा और हल्के से सहलाया। आंशी ने उसकी तरफ देखा तो उसने आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने को कहा। वहीं आंशी के चेहरे की उदासी देखकर लावण्या सब समझ गई थी। क्या हुआ तुम्हें? यहाँ आई थी तब तो बहुत एक्साइटेड लग रही थी, और यहाँ आते ही तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बच गए? लावण्या ने आंशी को परेशान करने के लिए कहा। वो टॉन्टिंग वे में बात कर रही थी। चेहरे पर 12 तो बजने ही हैं, कहाँ इसने सोचा होगा कि ब्रो के साथ में अकेले बैठकर आराम से खाना खाएगी और हम सब बेवजह कबाब में हड्डी बन गए। डोंट वरी आंशी, खाने के बाद हम तुम्हें तुम्हारा प्राइवेट टाइम दे देंगे, जस ने हंस कर कहा। जस के ऐसा कहने पर लावण्या ने उसकी तरफ घूर कर देखा। कुछ ही देर में उनका खाना हो गया था तो एक एक करके सब बाहर जाने लगे। मिस्टर जिंदल सबसे आखिर में बैठे थे। वो उठकर जाने लगे तभी अमन ने कहा, आप दोनों बात कीजिए, मैं आता हूँ। आंशी को शिव जिंदल के साथ छोड़कर अमन वहाँ से बाहर चला गया। आंशी उनके सामने नजरें झुकाए खड़ी थी। अमन के बाहर जाते ही शिव जिंदल ने सख्त लेकिन धीमी आवाज में कहा, शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैंने तुम्हें लंदन में क्यों रखा था, क्यों मैं इस बात का खास ख्याल रखता था कि तुम लंदन में ही रहो। मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना था, आंशी ने मायूस होकर कहा। बहाने मत बनाओ आंशी, मैं सब जानता हूँ। तुम यहाँ इंडिया अपनी फैमिली के पास रहने नहीं, बल्कि उस क्रिमिनल विधिक राणा से छुपते छुपाते आई थी, शिव जिंदल ने गुस्से में कहा। आंशी अब तक खुद को संभाल कर रख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने शिव की बात सुनी उसकी आंखों से आंसू बह गए।